कोई ईंधन और पानी आदि को आहरण कर रहा है, मतलब स्वीकार कर रहा है, और उसमें प्रवृत्ति है जिसकी, उसको पूछता है किं करोति भवान इति, आप क्या कर रहे हो। वो पानी और ईंधन वगैरह इकट्ठा कर रहा है तो उसको पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो नैगम ने से क्या जवाब देता है, साह ओदनम पचामी थी, भात पका रहा हूं। बोले क्या, भात पका रहा हूं। अब यहां भी जब कोई पानी खींचते हैं तो फिर कोई पूछे कि भाई क्या कल हमारे यहां नैगम ने न तदा ओदन पर्याय सन्निहित, उस समय भात कहां है, उसके निकट भात पर्याय नहीं है। तदर्थे व्यापारे सब प्रयुज्यते, लेकिन उसके लिए वो प्रवृत्ति कर रहा है, सब समारंभ कर रहा है, तो उस समय नैगम ने ऐसे कह दिया जाता है कि ऐसा ऐसा है। एवं प्रकारो लोक संव्यवहारो अभिनिवृत्तार्थ अभिनिर्वृत्तार्थ संकल्प मात्र विषयो नैगमस्य गोचरः। इस प्रकार जो लोक का जो संव्यवहार यानी जो बोलचाल होती है लोक में, वो अनभिनिर्वृत्तार्थ जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है उसके संकल्प मात्र को विषय करने वाला नैगम नय का ही विषय है। ये सारी चर्चाएं जो लोक में देखी जाती है वो किस नय की अपेक्षा से घटित होगी, नैगम नय की अपेक्षा से, क्योंकि नैगम संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला होता है। स्वजात्य विरोधी नहीं, स्वजात्य विरोधी नहीं एकध्यम उपानीय पर्यायानात् क्रांत भेदान अविशेषेण समस्त ग्रहणात् संग्रह। अपनी जाति का विरोध न हो इस प्रकार एकध्यम उपानीय सबको इकट्ठा कर लेता है, पर्यायान आक्रांत भेदान प्राप्त हुए हैं भेद जिनको, ऐसे अनेक पर्यायों को अविशेषेण समान रूप से ग्रहण कर लेता है समस्त ग्रहणात्, इसलिए वो समस्त को ग्रहण करने वाला होने से संग्रह नहीं कहलाता है। उदाहरण सत द्रव्यम, अब वो द्रव्यों की कैसी भी कोई भी पर्याय क्यों ना हो, सत उसमें है इसलिए सब द्रव्यों को उसने संग्रह ने अपने में समाहित कर लिया। घट इत्यादि, घट कह दिया, अब घट कितने प्रकार के होते हैं, लाल घड़े भी होते हैं, काले वाले भी होते हैं, और अभी और भी कुछ कलर्स आने लग गए हैं, तो ये सब क्या है, उसको घट कह करके उसने संग्रह नय ने अपने में समेट लिया। तो जो सबको अपने में समेट लेता है भेद प्रभेद किए बिना, लेकिन जाति समान होनी चाहिए, उसको संग्रह नहीं कहते हैं। जैसे मनुष्य कह दिया, अब मनुष्य में दुनिया के सारे मनुष्य आगे, आर्य म्लेच्छ सारे आगे, लब्धि पर्याप्तक अपर्याप्तक सब उसमें सम्मिलित हो गया। सत इति उक्ते सद इति वाग विज्ञानानु प्रवृत्ति लिंगानुमिति सत्ताधार भूतानाम अविशेषेण सर्वेषां संग्रह। सत इतना मात्र कहने पर सद इति वाग विज्ञानानु प्रवृत्ति लिंगानुमित सत्ताधार भूतानाम अविशेषेण सर्वेषां संग्रह, सबका संग्रह हो जाता है। सत इस प्रकार का जो वाक विज्ञान है, वाक विज्ञान का मतलब वचन संबंधी विशिष्ट ज्ञान, उसमें अनुप्रवृत्ति है जिसकी, ऐसे चिन्हों के द्वारा अनुमित अनुमान को प्राप्त हुए जो सत्ता के आधारभूत जितने पदार्थ हैं उनका अविशेषेण समान रूप से सभी का संग्रह कर लेना संग्रह नय का कार्य है। द्रव्यमिति उक्ते भी द्रव्य इस प्रकार कह दें तो भी द्रव्यति गच्छति तान स्थान पर्यायान इति उपलक्षितानां जीवा जीव तद भेद प्रभेदानां संग्रह। द्रव्य इतना कहने पर जो भी द्रवित होता है परिणमत होता है उन उन पर्यायों के साथ, वे सब उपलक्षित जो जीव अजीव और उनके भेद प्रभेद हैं सब को एक साथ संग्रह कर लेने वाला संग्रह नय कहा जाता है। तथा उसी प्रकार घटे इति उक्ते भी घट इस प्रकार कहने पर भी घट बुद्धिविधानानु गम लिंगानुमित सकलार्थ संग्रह। घट की बुद्धि का जो अभिधान है, अभिधान यानी नाम, यानी जिस नाम को सुनकर के अपने को घड़े का अंदाज हो जाता है, उसका जो अनुगम ज्ञान और लिंगानुमित, लिंग माने चिन्ह, और उससे अनुमान को प्राप्त होने वाले जितने भी घड़े रूप पदार्थ हैं, उन सकलार्थ संग्रह सबका, सब पदार्थों का संग्रह हो जाता है जो घड़े रूप होते हैं, घट शब्द इतना एक शब्द बोलने पर। तो ऐसा कैसे होता है? तो संग्रह नय के कारण अपन समझ लेते हैं कि इसने ये शब्द कहा है, इसका मतलब इसमें इनका संग्रह होगा। एवं प्रकार अन्योपि संग्रह नयस्य विषय, इस प्रकार अन्य भी संग्रह नय का विषय होता है। संग्रह नयाक्षिप्तानाम अर्थानाम विधिपूर्वकम अवहरणम व्यवहार, संग्रह नय से जो आक्षिप्त पदार्थ हैं, माने संग्रह नय ने जिन पदार्थों को स्वीकार कर लिया है, उन पदार्थों का विधिपूर्वकम अवहरणम, विधिपूर्वक जो अवहरण होता है, अवहरण का मतलब होता है उनमें से छटाई होती है जो, ठीक है ना, आम केले संतरे बहुत सारे सब फल एक साथ रख दिए, अब किसी ने कह दिया आम लाओ, तो उसमें से जो छटाई होती है उसका नाम है व्यवहार। को विधि, वो विधि कौन सी है? तो बोले यह संग्रहित संग्रह गृहीतोर्थस तदानुपूर्वेण एव व्यवहार प्रवर्तते इत्ययम् विधि, जो संग्रह के द्वारा ग्रहण किया गया विषय है उसी का ये भेद प्रभेद करने वाला व्यवहार नहीं होता है, ये उसकी विधि होगी। तद यथा, उसका खुलासा यह है कि सर्वसंग्रहेण यत् सत्वं गृहीतम्, सबके संग्रह पूर्वक जो सत्व ग्रहण किया गया है, तत्चानपेक्षित विशेषण, वो अपने भेद प्रभेद कोई अपेक्षा नहीं कर रहा है संग्रह ने, इसलिए न अलम संव्यवहाराय इति, बोलचाल में उतना पर्याप्त नहीं होता। अकेले संग्रह नय से आप बात करो तो किसी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इति व्यवहार नय आश्रियते, इसलिए व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है। ये जो व्यवहार नय है ये समय सार के निश्चय व्यवहार नय वाले व्यवहार नय में नहीं आता, ये दूसरे प्रकार का व्यवहार है। ये आगम का व्यवहार और वहां पर अध्यात्म का व्यवहार है, ये दोनों अलग अलग प्रकार के नय हैं। भ्रमित मत होना शब्द सुन करके, आगम पढ़ रहे हैं अपन अभी इस समय, तो यहाँ पर आगम में आगम वाला व्यवहार नय समझना, और वहां अध्यात्म पढ़ेंगे तो अध्यात्म में अध्यात्म वाला व्यवहार नय, वो अलग प्रकार का है। तो इसलिए व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है। यत् सत् तद् द्रव्यम् गुणो वा इति, जो सत है वही द्रव्य है, गुण भी है। इस प्रकार द्रव्येणापि संग्रह क्षिप्तेन, द्रव्य जो कि संग्रह के द्वारा ग्रहण किया गया उसके द्वारा भी कैसा है वो? जीवा जीव विशेषानपेक्षेण, जो जीव और अजीव के भेद की अपेक्षा नहीं रखता संग्रह ने, तो न शक्य संव्यवहार इति, तो उसके द्वारा संव्यवहार यानी बोलचाल हो नहीं सकती। अकेले द्रव्य बोलोगे तो किसको क्या समझ में आने वाला है? बोलचाल के लिए तो जीव अजीव आदि भेद प्रभेद की चर्चा जरूरी है। इति, इसलिए जीव द्रव्यम अजीव द्रव्यम इति वा व्यवहार आश्रियते, जीव द्रव्य भी होता है अजीव द्रव्य भी होता है, इस प्रकार से व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता है। जीवा जीवो अपिच संग्रह क्षिप्त नालम संव्यवहार आयते, जीव और अजीव इनको भी अगर संग्रह नय से आक्षिप्त कर लो, अपेक्षित करो, तो ये भी बोलचाल के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। इसलिए प्रत्येकम इन दोनों द्रव्यों में क्या क्या भेद करने पड़ेंगे? देव नारकादिर घटादिश्च, जीव के भेद करो देव नारक आदि, और पुद्गल के भेद करो घट आदि। तो इस तरह व्यवहारेण आश्रियते, व्यवहार के द्वारा ये सारे भेद प्रभेद हो सकते हैं। एवमेव नस्तावत् वर्तते यावत् पुनर्नास्ति विभाग, इस प्रकार ये व्यवहार ने वहां तक के विस्तृत हो जाता है जहां तक विभाग किया जा सकता है, और उसके बाद जब विभाग किया नहीं जा सकता तब व्यवहार नय की सीमा पूर्ण हो जाती है। जहां तक विभाजन हो सकता है वहां तक व्यवहार नय की गति है, और विभाजन जहां समाप्त हो जाता है वहां व्यवहार नय शांत हो जाता है। ऋजुम प्रगुणम, ऋजु का मतलब सीधा, सूत्रयति तंत्रयति इति ऋजु सूत्र, जो ऋजु यानी सीधे को सूत्रित करता है, ग्रहण करता है, तंत्रित करता है, आश्रय करता है, वो ऋजु सूत्र नय है। पूर्वा परांस त्रिकाल विषयान अतिशय्य, आगे और पीछे जो तीन काल संबंधी विषय हैं, एक एक जीव की तीन कालीन पर्याय होती है ना, तो पिछली और आगे वाली पर्यायों को अतिशय्य उल्लंघन करके छोड़ करके वर्तमान काल विषयानादत्त, सिर्फ वर्तमान काल को ही या वर्तमान कालीन पर्यायों को ही ग्रहण करता है। अतीतानागतयोर विनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्, अतीत और अनागत जो भूत और भविष्यत है, ये दोनों विनष्ट है अथवा अनुत्पन्न है। अतीत वाली नष्ट हो गई है और भविष्य वाली उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए उनके बारे में व्यवहार नहीं चल सकता। यही कारण है कि तच्च वर्तमान समय मात्रम, और जो वर्तमान काल होता है वो समय मात्र, एक समय बराबर होता है। तद विषय पर्याय मात्र ग्राह्यम अयम ऋजुसूत्र है, उसके विषय मात्र जो पर्याय है, एक समय की विषयभूत पर्याय कौन सी होगी, किसी भी द्रव्य की एक पर्याय एक समय में होती है, तो उस पर्याय मात्र को ग्रहण करने वाला ये ऋजुसूत्र न है। ननु, अब कोई शंका करता है कि ऐसा करने पर तो समव्यवहार लोप प्रसंग है, तीचे आगे पीछे की अगर कोई चर्चा ही नहीं रखोगे तो फिर सारा व्यवहार नष्ट हो जाएगा। जैसे बौद्ध मत में ऋजुसूत्र नए कोई सर्वथा सब कुछ मान लिया है, बोल सब कुछ क्षणिक है। तो बौद्ध गुरु का उपदेश सुनकर के एक बार एक सेठ आया अपने घर पर, और उसी दिन क्या संयोग बना कि एक दूध वाला पैसे मांगने आ गया। तो फिर उनने क्या जवाब दिया कि जिसने दूध दिया था वो तो नष्ट हो चुका, क्योंकि पर्याय क्षणिक है, और जो पैसे मांग रहा है वो कोई और है, इसलिए जिसने दूध दिया उसको पैसे न देकर जो मांग रहा है उसको मैं पैसे क्यों दूं। वो बेचारा उदास होकर के चला गया, तो उसको एक जैनी भाई मिल गया, स्वाद्यवादी। पूछा कि भाई क्या तकलीफ है तुम्हें, आज क्यों ऐसा चेहरा उतरा हुआ है, मुंह लटका क्यों है? तो बोले कि आज ऐसी ऐसी समस्या आ गई कि एक बौद्ध गुरु का उपदेश सुनकर हमारे जो सेठ जी हैं वो हमें पैसा नहीं दे रहे। बोले कि सब कुछ क्षणिक है, बोले देने वाला खत्म हो गया और फिर लेने वाला कोई दूसरा है, अब क्या करोगे। तो जैनी भाई असंयमी तो थे, लेकिन उनने अच्छा कुशल सुझाव दिया उनको, बोले कि तुम ऐसा करना मत सही में चोरी, लेकिन फिर भी सेठ को थोड़ा सा सही व्यवहार का ज्ञान हो जाए इस अपेक्षा से तुम ऐसा ऐसा कर लो। तो उसने क्या किया, वो दूध जो लाता था उसने, वो सेठ के जानवरों को संभालता था और दूध निकाल करके सेठ को देता था, तो उसको दूध वाला ही बोलते थे लोग। तो फिर उसने कुछ जानवर इधर उधर कर दिए। अब सेठ को जब जानकारी मिली, पहले तो सेठ ने तलाशी करवाई कि कौन कर रहा है ये सब शरारत, तो फिर पता चला, वो उपदेश भूल गया उस समय सेठ जब अपने माथे पर कोई बात आती है तो उपदेश एक तरफ रह जाता है, तो उपदेश भूल गया सेठ। तो फिर उसने देखा, तलाशी करवाई, पता चला कि यही है सब बदमाशी करने वाला, इसी ने जानवरों को इधर उधर कर दिए हैं, और लगता है कि अच्छा माल, मतलब खूब पैसे कमा लेगा, मैंने तो तनख्वाह दी नहीं है, अब ये जानवर बेच करके पैसे कमाएगा। सेठ ने बुलाया उसको और कड़क स्वर में कहा कि क्यों भाई तुम बेईमानी करने लग गए। तो बोले कि क्या बेईमानी की मैंने। सेठ बोलते हैं कि तुमने हमारे जानवरों को बेचने की कोशिश की, तुमने इधर उधर कर दिया। नहीं, बोले कि वो तो कोई और था, और जो आपके सामने खड़ा है वो कोई और है, क्योंकि सब कुछ क्षणिक है, नश्वर है। तब सेठ जी ने बोला कि बेचा तो नहीं है तूने। बोले कि नहीं बेचा सेठ जी, मैं ऐसी बेईमानी थोड़ी करूंगा। तो बोले कि ये ले तेरा तनखा, और वो जानवर वापस ले आ। बोले तो यहां पर यही प्रश्न किया है कि ऐसा ऋजुसूत्र नय को पकड़ लेने से तो पूरे बातचीत और लोक व्यवहार सब समाप्त हो जाएगा। इति चेत, तो आचार्य बोलते हैं कि न, अस्य नयस्य विषय मात्र प्रदर्शनम क्रियते। यहां सिर्फ इतना बताया कि ऋजुसूत्र किसको ग्रहण करता है। सर्व नय समूह साध्यो ही लोक संव्यवहार, लोगों में जो वार्तालाप और जो भी व्यवहार चलता है वो तो सातों नयों को मिलाकर के सब कामकाज चलता है लोगों का, एक नय से नहीं चलता कुछ। फिर लिंग संख्या साधनादि व्यभिचार निवृत्ति पर शब्द नय, शब्द नय नाम का एक नय है, वो होता है वो लिंग, लिंग माने स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, संख्या, संख्या का मतलब एक वचन द्विवचन बहुवचन, फिर साधन, साधन का मतलब कारक होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ये जो चलता है ना वो साधन होता है। तो इनके विवाह व्यभिचार निवृत्ति पर इनके दोष को शब्द ने स्वीकार नहीं कर सकता। तत्र लिंग व्यभिचार, इसमें लिंग संबंधी दोष क्या है, पुष्य तारका नक्षत्रमिति, पुष्य जो है ये पुल्लिंग शब्द है और तारका स्त्रीलिंग शब्द है, और नक्षत्रमिति, नक्षत्र जो है वो नपुंसक लिंग है, सब एकार्थवाची, या फिर समानाधिकरण कह लो इसको, विशेषण विशेष्य है। पुष्य क्या है तो बोले तारका, तारका माने ताराओं का समूह है, स्त्रीलिंग हो गया तारा। और उस समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्रमिति, नक्षत्र कहते हैं, नक्षत्र नपुंसकलिंग हो गया। ये चीज शब्द ने स्वीकार नहीं करेगा। संख्या व्यभिचार, संख्या संबंधी दोष कैसा, एक वचन बहुवचन, जल माप, जल ही आप, अप का एक जीव बोलते हैं ना जल को, पृथ्वी अप, तेज वायु, वनस्पति स्थावरों के नाम है। तो जलम आप, आप शब्द जो है पुल्लिंग है और जल एक वचन है, नहीं आप शब्द बहुवचन है और जल जो है एक वचन है। तो एक वचन के साथ बहुवचन का प्रयोग शब्द नय की दृष्टि में दोष है। वर्षा ऋतु, देखो वर्षा बहुवचन है बारिश, और ऋतु एक वचन है। आम्रा वनम, आम के बहुत सारे पेड़ लगे हों उसको वन कह दिया है, बहुत सारे बहुवचन है लेकिन वनम एक वचन है। अगर बहुत से पेड़ ना हो तो उसको वन नहीं कहेंगे, लेकिन बहुवचन के साथ एक वचन का प्रयोग जो है शब्द नय में वर्जित है। वर्णा नगरमिति, इस प्रकार ऐसे उदाहरण दिए हैं इसमें कि जिससे ये शब्द नय समझ में आता है कि शब्द नय में कोई भी व्याकरण संबंधी दोष स्वीकार नहीं किया जाता। बोलचाल में चलता है, बोलचाल में वर्षा ऋतु ही बोलेंगे आप, और फिर बहुत सारे पेड़ों को ही एक वन कहोगे क्योंकि वन का स्वरूप ही यह है कि जिसमें बहुत सारे हो। लेकिन व्याकरण क्या कहता है कि जहां बहुत होते हैं वहां बहुवचन होना चाहिए, एक वचन नहीं चलेगा। ये शब्द नय का विषय है और इसके आगे का जो विस्तार है इसको अपन अगली बार देखेंगे। अंतिम सूत्र प्रथम अध्याय का, प्रमाणैक देशाश्च नयास, प्रमाण का जो अंश होता है वो नय है। तदनंतर उद्देश्य भाजो निर्देश तव्यति यत आह, प्रमाण का वर्णन कर लेने के पश्चात नयों का वर्णन होना चाहिए, इसलिए ये सूत्र आता है। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया, सात नए हो गए जो नाम है सूत्र में। फिर थोड़ा सा अपन ने इसका कल भी स्वाध्याय किया था लेकिन तो भी एक झलक देख लेते हैं। एतिशाम सामान्य विशेष लक्षणम वक्तव्यम, ये सात नए हैं इनके सामान्य और विशेष लक्षण कहे जाने चाहिए। सामान्य लक्षणम तावत, सामान्य लक्षण क्या होगा नए का, तो आचार्य कहते हैं वस्तुन्यनेकांतात्मन्यविरोधेन हेत्वर्पणात्, जो अनेकांतात्मक वस्तु है उसमें विरोध न पैदा हो करते हुए हेत्वर्पणात् किसी कारण की विवक्षा से, साध्य विशेषस्य याथात्म प्रापण प्रवण प्रयोगो नया, जो साध्य विशेष है यानी जानने योग्य जो पक्ष है जो पहलू है उसकी यथार्थता को प्राप्त कराने में कुशल जो प्रयोग होता है उसका नाम है नय। सद्वेधा दो प्रकार का होता है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक चेति, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यन सामान्य उत्सर्ग अनुवृत्ति रित्यर्थ, द्रव्य कह लो सामान्य कह लो उत्सर्ग कह लो अनुवृत्ति कह लो एक अर्थ है। तद विषय द्रव्यार्थिक है, उसको विषय करने वाला द्रव्यार्थिक है। पर्याय विशेषोपवाद व्यावृत्ति रित्यर्थ, पर्याय कह लो विशेष कह लो अपवाद कह लो व्यावृत्ति कह लो, ये एकार्थक है। तद विषय है पर्यायार्थिक, वो जिसका विषय होता है वो पर्यायार्थिक नहीं है। तयोर भेदा नहीं कमादय, मतलब मूल कहने का तात्पर्य हुआ कि आगम में दो नए हैं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, अध्यात्म में भी दो नए हैं निश्चय और व्यवहार। तो यहां पर इन दो नयों के ही सारे भेद प्रभेद बनेंगे। नैगम आदि जो सातों भेद हैं वो इन्हीं दो नयों के अंतर्गत आ जाते हैं। तेषां विशेष लक्षणम उच्यते, उनके विशेष लक्षण को यहां पर कहा जाता है आने भी निर्वृत्तार्थ संकल्प मात्र ग्राही नैगमः, अभी काम हुआ नहीं है लेकिन फिर भी काम का संकल्प मात्र है उसको ग्रहण करने वाला नैगम नय है। उदाहरण दे रहे हैं, कंचित पुरुषम परिगृहित परशुम गच्छन्तम अवलोक्य कश्चित पृच्छति किमर्थम भवान गच्छतीति, किसी मनुष्य को हाथ में कुल्हाड़ा लेकर जाते हुए देखकर कोई दूसरा पूछता है कि आप किस लिए जा रहे हैं, स आह, वो कहता है प्रस्थमाने तुमिति, मैं एक लकड़ी से बनी हुई वस्तु लाने के लिए जा रहा हूँ। अभी तो लकड़ी लेने जा रहा है, लेकिन लकड़ी से बनी हुई वस्तु लाने जा रहा हूँ, ऐसा कहने का मतलब उसका इरादा, लकड़ी लाने का भाव जो है, उस उद्देश्य को वो प्रकट कर देता है। नासो तथा प्रस्त पर्याय सन्निहित, ऐसा नहीं है कि उस समय वो उस प्रस्त माने मापने का एक वो रहता है लकड़ी का, उसको लेकर के नहीं आने वाला है, लेकिन तदभि निर्वृत्त संकल्प मात्र प्रस्त व्यवहार, लेकिन उसकी रचना के लिए संकल्प मात्र होने पर कहने में ये आएगा कि मैं वो लेने जा रहा हूं, आटा पिसाने जा रहा हूं, बोलते ना आटा पिसाने जा रहा हूं। अब आटा पिसाने जा रहा हूं, और देखिए और दृष्टांत है इसमें, तथा एधोदकाद्याहरणे व्याप्रियमाणम कश्चित पृच्छति किं करोति भवान इति। अब ईंधन और पानी वगैरह को इकट्ठा करने में प्रवृत्त हुए किसी मनुष्य को कोई दूसरा मनुष्य पूछता है क्या कर रहे हैं आप, साह ओदनम पचामी थी, बोलता है कि मैं भात पका रहा हूँ। न तदा उदन पर्याय सन्निहित, वहाँ पर वो भात की पर्याय सन्निहित नहीं है, तदर्थे व्यापारे सब प्रयुज्यते, वो उसमें कार्य कर रहा है उसको बनाने का, इसलिए ऐसा बोलचाल में एवं प्रकार लोक संव्यवहार है, इसी तरह लोगों में बोलचाल होती है। न भी निर्वृत्तार्थ संकल्प मात्र विषयों नैगमस्य गोचर है, इसलिए ऐसा समझ लेना कि जो काम पूरा नहीं हुआ लेकिन फिर भी पूरा करने का संकल्प है, तो नैगम नहीं यही कहेगा कि भाई वो काम हो रहा है, ये नैगम नय का विषय हो गया। वैसे इसके और भी भेद प्रभेद होते हैं, भूत नैगम, वर्तमान नैगम, भावी नैगम, ऐसे और भी भेद हो जाते हैं। अब इसके बाद संग्रह नय की बात कर रहे हैं, स्वजात्य विरोधे नैकध्यम उपानीय पर्यायान आक्रांत भेदान अविशेषेण समस्त ग्रहणात संग्रह, अपनी जाति का विरोध न पड़े ऐसे सबको इकट्ठा करके आक्रांत भेदान पर्यायान अनेक भेद वाली पर्यायों को अविशेषेण समान रूप से समस्त ग्रहणात पूरा का पूरा ग्रहण कर लेने के कारण संग्रह नहीं कहलाता। सत द्रव्यम घट इत्यादि, सत कह दिया, द्रव्य कह दिया, घट कह दिया, तो इसमें जितने भी उस प्रकार के पदार्थ होंगे उन सब का संग्रह होगा। सद इति उक्ते, सत ऐसा कहने पर, सद इति वाग विज्ञानानुप्रवृत्ति लिंगानुमित सत्ताधार भूतानाम अविशेषेण सर्वेशान संग्रह। सत इतना मात्र कहने पर, सत इस प्रकार जो वाक विज्ञान है, वचन संबंधी जानकारी है, उसमें अनुप्रवृत्ति और लिंग यानी चिन्हों से अनुमित अनुमान को प्राप्त हुए सत्ता के आधारभूत सर्वेशाम सब पदार्थों का अविशेषेण संग्रह, समान रूप से संग्रह हो जाता है। द्रव्यमिति उक्तेपि, द्रव्य ऐसा कहने पर भी, द्रवति गच्छति तांस्तांस पर्यायानिति उपलक्षितानाम जीवा जीव तद भेद प्रभेदानाम संग्रह, इतना अकेला एक द्रव्य शब्द कह देने से संग्रह नहीं की अपेक्षा से वो उन पर्यायों को प्राप्त होने वाला और उनसे उपलक्षित जो जीव अजीव और उनके भेद प्रभेद सब का द्रव्य शब्द अकेले में संग्रह हो जाता है, संग्रह नहीं की अपेक्षा से। तथा उसी प्रकार घट इति उक्तेपि, घट इतना कह देने पर भी, घड़ा घट बुद्धि विधानानुगम लिंगानुमित सकल अर्थ संग्रह, घट रूप जो बुद्धि का अभिधान है और उसका ज्ञान, घट शब्द से क्या अर्थ निकलता है उसका ज्ञान आ गया और लिंगानुमित और उसके चिन्हों से अनुमान को प्राप्त हो गया, तो ऐसा जितना भी कोई पदार्थ हो, जितने भी पदार्थ हो, उन सकलार्थ संग्रह सबका संग्रह हो जाएगा। घट बोलने से काला घट भी आ जाएगा, लाल घट भी आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, डिजाइन वाला आ जाएगा, साधारण वाला आ जाएगा, सबका संग्रह हो जाएगा, ये संग्रह नय का काम है। एवं प्रकार अन्योपि संग्रह नयस्य विषय, इस तरह अन्य भी जैसे मनुष्य शब्द है, तिर्यंच शब्द है, ये सब भी संग्रह नय का ही विषय है। तिर्यंच में भले सुबह पड़े हुए 85 भेद हों, पढ़े थे ना सवेरे, कितने भेद थे तिर्यंचों के, 85, लेकिन संग्रह ने उन सबको एक त्रियन शब्द में संग्रहित कर डालता है। संग्रह ने का इतना काम है कि एक जाति वाले सब पदार्थों को इकट्ठा कर देना। संग्रह नय आक्षिप्ता नाम अर्थानाम विधि पूर्वक अवहरणम व्यवहार है। संग्रह नय से जो आक्षिप्त यानी ग्रहण किए गए पदार्थ हैं उनका विधिपूर्वकम अवहरणम, विधिपूर्वक अवहरण यानी पृथककरण, अलग अलग विभाजन करना, उसका नाम व्यवहार है, व्यवहार नय है। ये व्यवहार नय अध्यात्म वाले व्यवहार नय से अलग है। क्या समयसार आदि ग्रंथों में जो व्यवहार नय कहा गया है वो इससे बिल्कुल अलग है। इसमें और उसमें कभी कंफ्यूज मत होना, उलझना नहीं। ये आगम के व्यवहार आदि नए हैं और वो अध्यात्म के नए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भेद करने वाला नए है, संग्रह में सब कुछ आ गया था, उनके भेद प्रभेद बताने वाला, जैसे जीवाश्च, पांचवें अध्याय में सूत्र जीवाश्च और दूसरे अध्याय में जीव के भेद प्रभेद बताए हैं, तो सारे जो भेद प्रभेद हैं वो व्यवहार नए का काम है। भेद करने का नाम ही व्यवहार नय है। को विधि, अब कौन सी विधि है जिससे कि वो भेद प्रभेद करे, तो बोले कि यह संग्रह गृहीतोर्थस तदानुपूर्वेणैव व्यवहारः प्रवर्तते इत्ययम् विधि। जो संग्रह द्वारा ग्रहण किया गया पदार्थ है उसी के अनुपूर्वी के साथ व्यवहार प्रवर्तित होता है, बस ये विधि है। संग्रह से जो कुछ ग्रहण किया है उसके भेद प्रभेद करने का काम व्यवहार नय है और यही उसकी विधि है। वी और अवहरण, वी और अवहर, हरणम हारह, घय प्रत्यय करोगे तो हारह बनेगा, लिट प्रत्यय करोगे तो हरणम बनेगा। व्याकरण में ऐसे अलग अलग प्रत्यय हैं, तो फिर व्यवहरणम व्यवहारह, वी वी शब्द और अवहरण इनकी संधि करो तो व्य बन गया व्यवहर। इको यणची एक सूत्र आता है व्याकरण में, उससे क्या होता है कि ई का य बन जाता है, तो वी का ई जो है वो ये बन गया तो व्य हो गया, और उसमें अ अवहरण का अ मिल गया तो व्यवहार, व्यवहार नय बन गया, माने भेद प्रभेद करने वाला नय। और समयसार वाला जो व्यवहार नय है वो क्या होता है, वो क्या करता है, वो अभेद को भेद करता है, इसलिए उसको निश्चय की अपेक्षा से मिथ्या कहा गया है, अभूतार्थ कहा गया। नहीं, ये अभेद को भेद करने वाला ये है। संग्रह में सब अभिन्न थे, द्रव्य कह दिया तो सभी द्रव्य आ गए थे, लेकिन व्यवहार ने उसमें जीव आकाश धर्म अधर्म काल पुद्गल, ये जो भेद करने वाला ये व्यवहार नहीं हो गया। और उधर समयसार वाला जो व्यवहार नहीं है वो कैसा है, वो अभेद में भेद करने वाला। हमने यही बोला था क्या अभी, या भेद में अभेद बोला था? भेद में अभेद ये वाला करता है। हाँ नहीं, पहले वो बोला ना, तो फिर उसमें संशोधन कर लेना। अभी फिर से नए सिरे से सुन लो कि आगम का जो व्यवहार नय होता है वो संग्रह नय ने जिस को इकट्ठा करके एक जगह ला के रखा है उसके भेद करने वाला होता है। यानी अभेद में भेद करने वाला व्यवहार नय ये आगम वाला व्यवहार नय है, और अध्यात्म वाला व्यवहार नहीं क्या है कि वो भेद में अभेद करता है। वासुपूज्य भगवान लाल थे, अब जीव और शरीर ये दोनों अलग लक्षण वाले हैं, लाल रंग जीव का नहीं होता और वर्ण रहित शरीर नहीं होता। तो जीवस नत्थी वर्णो, जीव के वर्ण रस गंध आदि कोई भी गुण नहीं है, ये निश्चय ने कह दिया। लेकिन व्यवहार ने क्या कह दिया, वासुपूज्य भगवान लाल थे। तब क्या आत्मा लाल थी, जीवस्य नत्थि वर्णो, जीव का तो कोई रंग नहीं है। तो फिर ये जो कथन होता है, इस कथन का तात्पर्य यह है कि भेद है, लक्षण से भेद है, अथवा वैसे भी व्यवहार में भी जो चीजें एकदम पृथक पृथक हैं। अब जैसे 6-7 लोग हैं, कोई अहमदाबाद में है और फिर कोई मुंबई में है, कोई यहाँ हिम्मतनगर, कोई ईडर, सब इधर उधर बिखरे हुए हैं, लेकिन जब बात चलती है तो फिर एक परिवार। तुम्हारा परिवार कितना है, तो बोलते हैं 7 लोगों का। क्या मतलब, वो 7 होते हुए भी एक है वो। तो अनेक को एक बनाने वाला जो व्यवहार है वो समय सार वाला अध्यात्म ग्रंथ वाला व्यवहार है, और यहाँ पर एक को अनेक करने वाला, संग्रह में एक इकट्ठा कर दिया था, द्रव्य शब्द था, अब उसमें भेद प्रभेद करने वाला ये व्यवहार नया है। यानी भेद करने वाला एक व्यवहार होता है और दूसरा भेद को मिटाने वाला, भेद को गौण करने वाला दूसरा व्यवहार होता है। तो उसको उन्होंने अभूतार्थ कहा है। ये अभूतार्थ नहीं है, ये तो यथार्थ है।